اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین. آج کا ہمارا پروگرام فکر و نظر، گفتگو چل رہی ہے اس بنیاد پہ اس پروگرام میں کہ خواتین جو یورپ میں رہتی ہیں ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، اور ہم یہ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ہماری ٹو معروف اور ایکٹیو سسٹرز جو یو کے میں ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کروں گا، اور پھر گفتگو جاری ہوتی ہے. ہماری پیری سسٹر جو ہیں یہاں پر سیدہ ذاکرہ ام فروہ نقوی، جو یہاں پر ایک آرگنائزیشن یو کے میں لبیک یا زہرہ کے نام سے، جس کی وہ بانی ہیں، ٹرسٹی ہیں، اور بہت ہی مزید ایکٹیو کام کر رہی ہیں خواتین کے حلقے میں اور دوسرے ایشو جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں اور جنرل پبلک سے. اور ہماری دوسری بہن جو آئی ہوئی ہیں یہاں پر مسز سیدہ زہرہ زیدی، وہ بھی ایک معروف سپیکر ہیں اور سوشل ورکر اور کمیونٹی ورکر ہیں، چیریٹی میں کافی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اور ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کی ڈائریکٹر بھی ہیں، جو ٹیلی ویژن اسٹیشن کئی برس پہلے یو کے میں شروع ہوا تھا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسے میں نے شروع میں انٹروڈکشن میں پروگرام کے بہن ام فروہ، تو آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مزید مغرب میں رہتے ہوئے، آپ بھی یہاں پر کئی برس سے یو کے میں ہیں اور پاکستان سے یہاں پر آئیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی ایکٹیویٹیز لبیک یا زہرہ جو آپ نے ویلز میں شروع کی، اس لحاظ سے آپ یوزلی آرگنائز کرتی ہیں ایکٹیویٹیز لیڈیز کی، تو جو یعنی کہ مشکلات درپیش آتی ہیں خواتین کے لیے یہاں پر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے یا کیا فکر ہے اس وقت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں معصوم علیہ السلام کی حمد و ثنا کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور آپ جیسے آنریبل بردر کے سامنے، بھائی کے سامنے جو ہے جو اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں. مجھے اپنی جو بھی دین کے حوالے سے ہماری خدمات ہیں اس کو شیئر کرنے کا موقع ملے، اور پوائنٹ آف ویو وہی اسلامی ہے، اور اپنے ناظرین جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں بھی معذبانہ سلام عرض کرتی ہوں، جو جتنے بھی لوگ عالم اسلام میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک سوال کے ساتھ بہت سارے سوال پورا ایک ہے، تو چونکہ پروگرام کا جو فارمیٹ اور اس میں ہمیں کم وقت میں زیادہ چیزوں کو سمیٹنا ہے، میں صرف اتنا کہوں گی کہ انسان کہیں بھی رہے، وہ یو کے یورپ کی سرزمین ہو، ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو، یا اپنا ایشین کنٹریز ہوں، کوئی بھی، ہر وجود وہ بینگ اے وومن ہو یا جو ہے وہ ایک میل اس میں ہو، رسپانسبلٹی اور اپنا جو ڈیوٹیز ہیں نا ان کو پہچاننا.
صحیح.
اور
جی اس جی فرمائیے جو آپ کہہ رہی تھیں. جی. کہ میں دوسری طرف جانا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد جو آپ دوبارہ
کہیں بھی رہیں. جی. رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے.
صحیح.
اور پھر جو سٹیٹس آپ کو آپ کے گریٹسٹ کریئٹر نے دیا ہے.
صحیح.
جو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجتے ہی آپ کو آپ کا سٹیٹس دیا ہے، جیسے وومن کا سٹیٹس ہے، مردوں کا سٹیٹس ہے، جیسے اس کے بھی بہت سارے ایشو ہیں. تو جب آپ بہت ہی خوبصورت اور لطیف سٹیٹس جو قرآن نے عورت کو دیا ہے اس کو ایک عقیدے کی نظر سے بھی دیکھ لیں، تو پھر ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ کہیں بھی کام کر سکتے ہیں، وہ چاہے یورپ کی سرزمین ہو، وہ لنڈن ہو، وہ کوئی بھی علاقہ ہو، اور اس میں پھر خصوصاً وہ خوبصورت آیات جس میں سورہ احزاب میں بھی، اور جو سورہ نحل کی جس میں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلاں نہ حیات چاہیے بتا، اس کا ذکر ہے. تو اس میں فرق نہیں پڑتا، عمل صالح ہونا چاہیے اور اس کو فالو کرتے ہوئے.
صحیح. بالکل. بہت ہی مناسب انٹروڈکشن آپ نے فرمایا بہن سسٹر زہرہ. वही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपका यानी कि हमारी प्रोग्राम से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, आप खुद यूके में पैदा हुई, उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी बरस आपने गुजारे, यानी कि फॉर्मेटिव ईयर्स जिसको कहा जाता है, तो ये दोनों बैलेंसेस, आपने पाकिस्तान की भी परवरिश देखी, यहाँ पर पैदा हुई फिर वापस आई मजीद यानी कि आपकी शादी के बाद, और जो एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, यकीनी तौर पर आपका नज़रिया, आपका व्यू कम्युनिटी तक पहुँचता रहता है, तो जो चैलेंज यानी कि एक खातून पाकिस्तान या इस्लामिक इन्वायरमेंट में रह रही है उसकी मजीद अलग यानी कि सिचुएशन है, और जो यूरोप में ख्वातीन रह रही हैं, मुसलमान ख्वातीन और खुसूसन जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हों जो हिजाब पहन के बाहर निकलती हैं, उस लिहाज से आपने क्या यानी कि फ़र्क देखा है यहाँ पर?
बहुत शुक्रिया शबीर भाई आपका, और यहाँ आज मौका मिला इस नौइयत से कि जहाँ इस बात को हम अंडरस्टैंड कर सकें कि बीइंग ए खातून के, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन हो या यूरोप हो या एशिया की हो, तो इस सब में मेन चीज़ जो है ये देखी जाती है कि जहाँ हमने इस नौइयत के साथ कि अगर खातून जिस एटमॉस्फेयर से ताल्लुक़ रखती है, आपको कई कल्चर्स नज़र आएंगे, इस्लामिक कल्चर होगा और गैर इस्लामिक कल्चर होगा, और जिस कल्चर में भी उनका ब्रॉट अप होगा वो उसी की फॉर्मेट के साथ उनकी ज़िंदगी मंजर आम पर आएगी। और यहाँ इसी हवाले से कि जहाँ जब हम इस नौइयत पर बात करते हैं कि ख्वातीन अगर मिसाल के तौर के पर आप समझते हैं कि मेरी या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी हाफ ऑफ द ज़िंदगी जो है वो मिडल ईस्ट या एशिया की तरफ गुजर रही है, और बाकी जिन लोगों की ज़िंदगी इस नौइयत से है कि जहाँ पर यूरोप में है। लेकिन मेन चीज़ ये है शबीर भाई कि आप अपने फेथ को किस तरह से कायम रखते हैं, आपका अकीदा, आपका अमल, और उसमें मेन चीज़ जो है आपका ब्रॉट अप, आपकी फैमिली बैकग्राउंड्स के जो आपको किस तरह से आपकी परवरिश करते हैं, तो मेन चीज़ ये। अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी ग्रूमिंग जो हुई है वो इस नौइयत से हुई है कि जहाँ पर आप समझते हैं कि इस्लामी पैराए में ज़िंदगी एक खातून को कैसे गुजारनी चाहिए, तो फिर सरजमीनों का फ़र्क नहीं पड़ता, अब चाहे एशिया हो चाहे यूरोप हो, यानी दुनिया के किसी भी खित्ते में आप चले जाएं, डिपेंड करता है कि किस तरह से आपकी ग्रूमिंग हुई है। अगर आपकी परवरिश इस्लामिक तरीके से हुई है तो एक कॉन्फिडेंट देता है, इस्लाम इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंट देता है, क्योंकि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र को पढ़ने की मौका भी मिला और उन लोगों से मुलाकात भी रही, लेकिन फिर जहाँ तक ये इसलिए नहीं क्योंकि मेरा ताल्लुक दीन इस्लाम से है या मजहब तशय्यो से है, लेकिन जब हम अपने इस्लाम को और दूसरे मकातिब को देखते हैं तो उसमें एक वाज़ह फ़र्क नज़र आता है कि जो तकद्दस और जो बड़ाई और जो दीन इस्लाम खातून को देता है वो किसी दूसरे मकतब में, किसी दूसरे मकतब फिक्र में नज़र नहीं आती।
जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, मगर जो चैलेंज सिस्टर हमें फरमा, जो खुसूसन यूके में रहते हुए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और मेरी खुद यहीं पर ही यूके में परवरिश हुई, तो ये देखा जाता है कि जो चैलेंज उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर दरवाज़ा खोलें आप तो सड़क पर एडवर्टाइजिंग इस गलत तरीके की नहीं होती है इस्लामिक ममालिक में, यह सड़क पर वो फरखात वो गलत चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो आपके बच्चे होंगे वो देखेंगे बिलबोर्ड पर कोई ऐसी चीज़, इस्लामिक ममालिक में वो नहीं दिखा, तो उसका यकीनी तौर पर इम्पैक्ट होता है, आप जितनी भी अच्छी परवरिश करना चाहें उसमें एक रखना पैदा होता है, उसमें एक दुश्वारी पैदा होती है, और उसकी बिना पर काफ़ी सिचुएशन जो है ख़राब हो जाती है, तो उस लिहाज से जो मैंने सवाल पूछा कि था कि वो चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है?
मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जिस पे हम बड़ी सेंसिटिव लाइन पे खड़े हैं यूके के अंदर या यूरोप के, वो स्कूलिंग है बच्चों की। बोर्ड उस वक्त तक बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करेगा अगर बच्चों का ब्रॉटअप और स्कूलिंग बच्चे की ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मुसलमान कम्युनिटी हमारी, जैसे हम आपने मुझे पहले भी पूछा, हमारी तंजीम है, जैसे कि हमने मोबाइल सर्विस से ये काम शुरू किया, यानी दुरूस के ज़रिए लबैक या ज़ारा के प्लेटफॉर्म
सही
से, और उसमें हमने घर घर जो है ना बैठकर माँ को समझाया कि तुझे चेक रखना है कि तेरा बच्चा स्कूल में किस तरह जाता है, क्या होमवर्क लेके आता है, पेरेंट्स मीटिंग पे जाते हैं और पेरेंट्स इवनिंग पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, यहाँ डिस्टेंसेस बच्चे और वालदैन के दरम्यान एक चैलेंज, स्कूल के अंदर ईयर यानी 11 ईयर्स का बच्चा जब होता है ना, ईयर 5 में जाकर या 6 में जाकर उसको व्हाट इज़ इस्लाम, मेरे पास इस वक्त पूरी वो जो हैरो में जैसे मैंने काम किया बींग अ गवर्नर पेरेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव इन काउंसिल, तो उसमें मैंने
माशाल्लाह
सारी चेक की चीज़ें, आप बिलीव करें, नर्सरी से बुद्धिज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, जुइशिज्म क्या है, ये
यानी कि
सारी
दूसरे
चीज़ें थी,
मजाहब के
सारी
बारे
थी,
में।
एंड पे जाके ईयर 5 में जाके व्हाट इज इस्लाम, यानी जब बच्चा 10 साल का हो गया
अच्छा अच्छा
फिर उसको
अच्छा
जाके
सही
बताया कि इस्लाम क्या है,
सही
ये चैलेंज हमारी माओ के, मैं समझती हूँ ठीक है मर्द काम करना बाहर, लेकिन माँ एक मदरसा है, इसलिए हमने लबैक या ज़ारा कहकर वो 69 अहादीस की पैम्बर के ज़माने की जो रावी अहादीस की खवातीन थी उनके नाम रखे, हमने कहा कि देखें आइमा के ज़माने में जो खवातीन ने अहादीस को रिवाइज किया, एक 300 से ज़्यादा लिस्ट मौजूद है आइमा के ख़ानदान में, खुद सैयदा पाक की खुद शागिर्दों में वो लिस्ट मौजूद है, 5 खवातीन जिनमें जनाब फिजा सलामुल्ला अलैहा का मतलब बिल्कुल फ्रंट पे नाम है, हमने ये मिसालें दी और कहा कि आप लोग उठें, और सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज है जो इस वक्त जिसमें हमें कोई वर्ल्ड वाइड सुन भी रहे हैं, कोई स्कॉलर्स, कोई ऐसी तंजीमें, ऐसे इस्लामी ममालक, ऐसे फिक्र रखने वाले जो स्ट्रांग हैं और ये काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ यूके के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है ना 4 साल से 10 के दरम्यान उसको बचा लें,
सही
ये सबसे
सही
बड़ा चैलेंज है हमारा।
सही है।
उसके बाद अगर 10 साल, मैं समझती हूँ 5 से 11 साल का बच्चा अगर अपनी असेंबली में दुआए अहद सुन लेता है, दुआए फर्ज को याद कर लेता है, जुमे में सूरह जुमा को पढ़ता है और अपनी तरबी, उसके बाद वो किसी भी स्कूल में जाएगा वो एक मोमिन होगा, तो इसलिए ज़रूरत ही
जी
है।
ये एक इंटरेस्टिंग यानी कि सवाल निकलता है ये बहन के जवाब से। जैसे मैं जब पाकिस्तान में था मैं क्रिश्चियन स्कूल जाया करता था, चर्च स्कूल था। आपको तो पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो है तो सवाल ये मैं करना चाह रहा था कि मैं अक्सर मजाकिया तौर पे कहता हूँ कि मुझे जो है लॉर्ड्स प्रेयर पहले याद हुई थी बनिस्बत सूरह हम के, पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी, यानी कि जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाया जाता है।
खुदा
खुश आमदीद। हम दोबारा प्रोग्राम शुरू करते हैं। ब्रेक से जाने से पहले मैंने हमारी बहन सिस्टर जहरा जैदी से सवाल पूछा था कि यकीनी तौर पर सोसाइटी में हर किस्म का इन्फ्लुएंस बच्चे पर होता है, चाहे मीडिया का हो, चाहे अपने दोस्तों का हो, स्कूल का हो, हर किस्म के उससे मजमूआ बनता है इंसान। तो यहाँ पर जो खातून का, जो माँ का रोल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली खुसूसन ज़्यादातर जो मर्द होते हैं वो बाहर एक्टिविटी काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे घर पे नहीं रहते, माँ ज़्यादा रहती है। तो जो डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं यंग कम्युनिटी के लिए, उसमें किस तरह से जो है मदर या वुमन नेक्स्ट जनरेशन की परवरिश के लिए क्या कर सकती है वो?
बहुत शुक्रिया शबीर भाई। यहाँ एक शेर का एक जुमला है, आगोश मादर एक जहाँ है मेरे लिए। तो उस जहाँ को समझने के लिए माँ की आगोश एक ऐसा काम करती है। अब ये डिपेंड करता है कि माँ किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करती है, और आम तौर पे देखा गया है कि बच्चे माँ की ज़बान बोलते हैं। तो अगर किसी भी जगह पर इंसान है, चाहे यूरोप है, चाहे पाकिस्तान, या कोई भी आप एशिया कहीं कभी माहौल और कंट्री ले लीजिए, अगर तरबियत का वो फैक्टर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसे माँ कहा जाता है, तो उसकी तरबियत के असरात उस बच्चे की ज़िंदगी पर नज़र आते हैं। और ये ज़िंदगी का तसलसल जो है ये उसके उस ज़माने से है कि जहाँ अल्लाह सुब्हान तआला भी अपने बंदों के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरबियत के कुछ मराहिल हैं, पैदाइश से लेकर, बल्कि यहाँ तो शिक में मादर से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद जैसे बच्चा आगोश मादर में आता है तो 7 साल का पीरियड है कि उस वक्त में किस तरह से उसकी ब्रॉटअप करनी है। 7 से 14 साल का है, 14 से फिर 21 साल तक का है, और 21 साल के बाद फिर उसे इस जमाने के हवाले कर दो, उसे उड़ना भी आएगा, उसे
फाउंडेशन पुख्ता हो जाएगी।
एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये इनिशियल 7 साल जो हैं, इसमें उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, इसमें सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बाप के ऊपर भी जाता है, क्योंकि बाप का काम सिर्फ इतना नहीं है कि वो कमा कर लेकर आए, बल्कि उसने, ये तो गाड़ी के 2 पहिए हैं कि जिसमें सवार होने वाली उनकी औलाद है। अब अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो आपको भी पता है कि वो फिर काफ़ी मुश्किलात की गाड़ी शिकार हो जाती है, और उसमें पैसेंजर्स भी उनके एक्सीडेंट के काफ़ी एहतमाल होते हैं। ये दुनिया इसी तरीके से है कि यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअली तौर के ऊपर अपने घर पे, अपनी ज़ात पर और अपने बच्चों को फोकस करें, तो एक मजबूत माशरा सामने आएगा। और यहाँ चूँकि मैं खुद कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व रहती भी हूँ, और एज ए पाकिस्तान के, और बल्कि मुझे तो ख़ास तौर पे लगता ही है कि यूरोप में हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं कंपेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, क्योंकि वहाँ निकलते के साथ ही आपको वो चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे आपने कहा था कि स्कूल के माहौल जो हैं, खानम ने भी ये बात कही, और इसी तरीके से बाहर निकल के भी फिर बच्चों की दोस्तियाँ भी हैं, ये सारी चीज़ें तो हम डे वन से, मतलब मेरा ये मुशाहिदा भी है और तजर्बा भी, क्योंकि एज ए बींग ए मदर और अपने बच्चों के और बच्चों के बच्चों के बाद भी, कि देखा गया कि जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रीज़ में, यूरोप में पेरेंट्स की बच्चों के साथ है, वो आपको पाकिस्तान या आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नज़र नहीं आती हैं। और यही वजह है कि आप अब देखिए कि माशाल्लाह जैसे लबैक ज़ारा ये खुद काम कर रही हैं उस पर, जिस तरीके से
यहाँ, यानी अभी 10 सालों में ये बढ़ा, इससे पहले नहीं थी इतनी इन्वॉल्वमेंट, डिस्टेंसेस। अब जो आप जैसे मीडिया आया, आप जैसे लोगों ने काम शुरू किया या हमें तौफीक मिली, तो अब डिस्टेंसेस, अब पेरेंट्स, मदर, ये इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ,
वो आपको भी, वो याद होगा, अगर भी यही तो... वजह हुई क्योंकि इतने सेटबैक्स आए फैमिलीज को कि जिसने फिर, जाहिर सी बात है, जरूरत इजाद की माँ है, तो हर इंसान को अपनी कमजोरी नजर आई कि अगर हमने अपनी इसलाह नहीं की, अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, तो ये तो फिर ऐसा लॉस होगा कि जिसे नस्लें भुगतेंगी।
हमारा पहला फोकस ये था।
देखिए यहाँ पर एक जो सवाल सिस्टम में फरवा आता है, देखिए मैं यहाँ पर जो है 50 साल से रह रहा हूँ, परवेश, यानी कि जब छोटे थे आए थे हम 60s में वालिद साहब के साथ, मेरे वालिद साहब टीचर हुआ करते थे, मगर मुश्किल ये थी, उस वक्त सिचुएशन अलग थी, इस वक्त अलग है। अच्छा, हम जब यूनिवर्सिटी गए थे, यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में नमाज खाना नहीं होता था, मगर अब हर यूनिवर्सिटी में नमाज खाना होता है, यानी कि मैं 70s की बात करता हूँ, नहीं था, इदारे कम थे अपने मुसलमानों के, खुसूसन शियों के, इसनाशरी के, एक वाहिद इदारा होता था, इदारे जाफरिया, जो 60s में बनाया गया था, वहाँ पर पूरे یعنی کہ انگلینڈ کے مومنین آیا کرتے تھے. اب مزید 70-80 ہمارے ادارے ہیں یہاں پر. ہاویور اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہوا ہے, جو میں دیکھتا ہوں کہ مشکلات پیدا کرتا ہے, اور اس پہ آپ کا ایک نظریہ میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایکٹیویٹیز کم تھیں مگر فائش چیزیں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں تھیں.
جی میڈیا,
سمجھے, میڈیا ہوا, ہمارے موبائل فونز, اسمارٹ فون جو ہیں بچوں کے پاس ہے, اس پہ ہر چیز
ڈفرنٹ کنیکشن,
ہر چیز اس پہ دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے ساتھ جو چیلنجز پیش آ رہے ہیں اس کا جو ہے انسان کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے؟
ایگزیکٹلی ہم نے جیسے خود بچوں کے ساتھ جب آپ بچوں کو ڈفرنٹ ایکٹیویٹی دیتے ہیں, جیسے ہمارے آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ جو اسمارٹ فونز میں گیمز آئی ہیں ایسے, اس سے برین پہ افیکٹ ہوتا ہے, انسان کی میموری پہ افیکٹ ہوتا ہے, اس کی جو ویوز ہیں نا, یہ ابھی ریسنٹ ڈاکٹر میڈیکل ریسرچز بھی آ رہی ہیں, مطلب جو پریگننٹ وومنس ہیں ان کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہے, اور بچوں کے لیے حساب سے بھی کافی زیادہ نگیٹو ریزز کے جو اثرات ہیں وہ برین اور باڈی پہ آتے ہیں, جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں یہ جیسے وہ پہلا تھا نا کہ ہم ڈسٹینسز کو کم کرنا, یہ ہمارا فوکس ہے کہ ہم بچوں کو گھروں میں ایسی, جیسے ہم نے مثلا میں اپنے بچوں کی اگر مثال دوں کہ بھئی آپ نے گیم نہیں کھیلی تو میں اس کو کوئی کوکنگ ریسیپی میں کہوں گی تم کیک کپ کیک بناؤ مثلا چھوٹی سی, یا میں پھر اس کو کہوں گی کہ میں
کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اسمارٹ فون ہے, ہر ایک نے اپنے بچوں کو دیا ہوا ہے کہ کانٹیکٹ میں رکھنے کے لیے, مگر
ان کو ڈفرنٹ اٹریکشنز اور دے کے اٹریکٹ کیا جائے کہ تم یہ کام کرو تو میں یہ تمہیں یہ اس کے اس حساب سے ملے گا. تو پھر پورا جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ پورا قرآن رمضان میں فنش کرو گے میں بعد میں آپ کو یہ والی چیز جو آپ کی فیوریٹ ہے موبائل ہی چلے
کوئی گفٹ
میں دوں, تو پھر وہ پورا ٹائم وہ ایک دن میں سورہ پورا پڑھ رہی ہے. اچھا اب تم سورہ جمعہ یاد کر لو گی تو یہ, اب سورہ جمعہ یاد کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ وہ پورا اس کو, اس کی میموری بھی, اس کی روح پہ بھی اثر ہوگا, باڈی پہ بھی اثر ہوگا پورا,
کیونکہ نئی ٹیکنیک سوچنا پڑے گا. یعنی کہ یہ بتا رہی ہیں
ٹیکنیکس یہ ہو کہ آپ بچے کو دوسری طرف سے ایک ایسی اٹریکشن دے دیں, ایسا کام دے دیں کہ جو اس کی موسٹ فیوریٹ چیز ہے اس تک پہنچنے میں اس کو مراحل جو ہے نا گزر کے جانا پڑے, اور جب وہ مراحل سے گزرے وہ مراحل اتنے اٹریکٹیو ہوں کہ وہ خود ان مراحل میں اس طرح مکس ہو جائے کہ وہ انہی کے ساتھ انجوائے کرنا شروع ہو جائے. یہ میری آبزرویشن بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے. ہم نے ایکٹیویٹی ڈے رکھے جیسے اب بہت زیادہ ہوتے ہیں ہماری, بہت ساری پہلے اتنی آرگنائزیشنز نہیں تھی, اتنے سیمینارز نہیں تھے, کانفرنسز نہیں تھے, میڈیا نہیں تھا اتنا, تو اب ایکٹیویٹی ڈے رکھنے میں بچوں کو جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جو برین کو زیادہ ایکٹیو کرتی, اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو فیلڈ کے اندر ہیں, پارک کے اندر ہیں, یا گھر میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ بچے کو, بچہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے گھر میں ٹرمپلین چاہیے مثلا, تو وہ پھر گیم کی بجائے وہ ٹرمپلین میں جا کے ایکسرسائز کر لے تو یہ بیسٹ ہے. بھائی مجھے سوئنگ چاہیے ماں, نہیں نہیں نہیں, اب وہ بیٹھے گا ٹی وی سے بچائیں, میں یہ کہہ دیتی ہوں ٹی وی پہ بیٹھنے کے بجائے اس کو کام ایسا,
ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ, آپ کو پتا نہیں کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کمپیوٹر پہ.
جب آپ اس کو کام دیں گے نا کہ آپ نے اگر اس محرم میں مثلا اتنا بی بی سی کی اسلام علیہ کے بارے میں پڑھنا, یا جیسے ہم جیسے لوگ ہیں باجی بھی یہ ایکسپیرینس رکھتی ہوں گی کہ جب آپ خود کرتے ہیں نا تو بچہ خود, میرے بچوں نے کبھی, میں نے ان کو نہیں سکھایا ہے کہ آپ نوحہ پڑھیں, آپ قصیدہ پڑھیں, آپ یہ چیز کریں, وہ خود دیکھتے ہیں ماں کیا کرتی ہے.
یعنی کہ ایگزامپل از بیٹر دین ٹیلنگ دیم,
میں ان کو پتہ ہے اذان ہے تو ماں نے بات نہیں کرنی ہے, جانا ہے, تو پھر وہ کتنی کی دیر اس چیز کو دیکھے گا ایک دن وہ فالو کرے گا, بجائے اس کی کہ میں مطلب بہت زیادہ شور کروں یہ کروں, وہ خود پک کرے گا اس چیز کو. مدر, اسی لیے قرآن نے بھی ماں کو معلم کہا اور مرد کو مزدور کہا. تو ہم دو چیزیں پک کر لیں, معلم انسان بناتا ہے, اس لیے اس کی ذمہ داری, اس کی آبرو, وہ کہتے ہیں ما اکرم النساء الا کریم, انسان بزرگوار وہی ہے جو عورت کے ساتھ کریم ہو, عورت یعنی مرد بھی عورت کو ایسا ماحول دے کہ وہی اپنے گھر کو ایک ایسا مدرسہ بنا کے ایسی ایکٹیویٹی, اسی لیے عورت کا ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری ہے. یعنی میڈیا بھی ایجوکیشنل ایسی چیزیں کرے جس سے مائیں انوالو ہوں, بچے انوالو ہوں, جیسے ہمارے کر رہے ہیں چینلز یہاں پہ, آپ ایران میں کوئی بھی چینل کھول کے دیکھیں وہاں کوئز پروگرام ہے, جیسے بہت سارے چینلز میں بچوں کی چھوٹی چھوٹی اتنی زبردست ایکٹیویٹیز ہیں کہ بچے بیٹھتے ہیں اور وہ اسلامک بھی ہیں,
صحیح,
تو وہ سی بی بی سی نہیں دیکھتے, ہمارے پاس عربک ڈش ہے, تو اب بچے اگر وہ دیکھ رہے ہیں چینل تو اس میں پھر وہ سی بی بی سی نہیں لگائیں گے, ان کو وہ مزہ آ رہا کہ امام رضا کی سٹوری سنائی جا رہی ہے اور امام حسین کی, مولا عباس کی سٹوری سنائی جا رہی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود انگریزی ماحول میں ہیں تو آپ کا بچہ انگریز بنے گا, باجی والی بات, اگر آپ اسلامی ماحول میں ہیں تو چیلنجز کا مقابلہ بچہ بھی کرے گا, کیونکہ اس کے پتہ ایک अनसीन इफेक्ट होता है दुरूद का भी, कुरान का, खुद आपकी रूह का. यानी आप दीन प्रैक्टिस जब करते हैं आप ब्रीथ करते हैं उसको.
सही.
तो जैसे आपने अच्छा लफ्ज बोला, उसकी ब्रीथ से पूरा एनवायरनमेंट जो है ना वो मुअत्तर होता है. अगर वो पॉजिटिव है तो आपका माहौल मुअत्तर होगा.
जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अच्छी बातें सुनना है तो अच्छी बातें किया करो. यानी कि अगर गुफ्तगू ही ऐसी हो कि जिसमें
और आप आपके दिल में वो नूर हो इल्म का,
तो यानी कि अच्छी बातें इंसान उसी बिना पर करेगा कि अंदरूनी तौर पर उसमें अच्छी चीजें हैं, बुरी बातें वही करेगा जो.
जहाँ नेगेटिव सोच रखने वाले लोग ज्यादा होंगे वहां आपको डिप्रेशन फील होगा.
और दूसरी चीज
मेडिकली भी आप
कि यहाँ पर अगर जैसे आजकल के जमाने में ये हाई टेक यूज की जाती है, स्मार्टफोन्स हैं, आईपॉड्स हैं, आईपैड्स हैं, नोटपैड्स हैं, इनको अपने बच्चों के साथ बैठकर खुद यूज करें,
खुद यूज करें.
क्योंकि जब आप उनके साथ
जी मैं यहाँ पर क्योंकि अभी कंक्लूजन की तरफ पहुंचने वाले हैं, तो मैं एक सवाल जो मजीद आपसे पूछना चाह रहा था वो ये है कि ठीक है दुश्वारियां हैं और उसके साथ जो है अपॉर्चुनिटीज भी हैं, मगर जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर जो मुसलमान यूके में रह रहे हैं, जितने भी मुस्लिम स्कूल्स हों या एजुकेशन हो, हार्डली 1% मुस्लिम पॉपुलेशन उसका बेनिफिट उठा सकती है. 99% जो है वो स्टेट स्कूल्स में जाते हैं. अच्छा, और जो चैलेंज है स्टेट स्कूल्स का, आपको तो पता है कि मैरिज के लिहाज से, सेक्सुअल इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से, हर किस्म की इमोरल एक्टिविटी स्कूल में पढ़ाई जाती है. अच्छा, तो उसके लिहाज से क्योंकि आप मदर भी हैं और ग्रैंड मदर भी हैं, तो उस लिहाज से आपका यानी कि पर्सनल और जनरल नजरिया क्या है?
आपने आपकी जो फर्स्ट एजुकेशन
एक
थी,
एक मिनट में प्लीज
जी
जवाब.
बिल्कुल, चूंकि मेन चीज जो है वो फोकस करती है जो घर का माहौल है. मैंने पहले भी इस बात को कहा, आप किसी भी माहौल में चले जाएं, ये हो सकता है कि टाइमिंग आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करे, लेकिन जो चीज़ आपने फीड की गई है आपको बेसिक में, वही आपके सामने आ जाएगी. मैंने बल्कि मेरा एक्सपीरियंस है इस हवाले से, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं बड़े अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ अरसे देखा कि बच्चे या बच्चियाँ बेरार हो गए हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद देखते हैं कि बैक टू नॉर्मल आ गए, क्योंकि इस फिज़ा को वो थोड़ी देर के लिए अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें फीड की गई है बचपने में, जिस तरीके से उन्हें तरबियत दी गई है, वो बैक टू नॉर्मल उधर आ जाएंगे. बिल्कुल जैसे आपने अलमबाद में सीखी, लेकिन चूंकि घर का जो माहौल था, आज इतने अरसे यूरोप में रहते हुए आप इसी काम को कर रहे हैं कि आज ये प्रोग्राम आप प्रेजेंट कर रहे हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर दोज नाइस वर्ड्स सिस्टर जहरा जैदी. हमारा ये प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म होता है. इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी. नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर सकें. इंशाल्लाह अगली वक्त के लिए खुदा हाफिज़. मुलाकात होगी फिर.